नेहेमिया अध्याय 4 पुनर्निर्माण कार्य का विरोध। जब सनबल्लत को यह मालूम हुआ कि हम शहरपना को दोबारा से बना रहे हैं, वह गुस्से से भर गया और हम यहूदियों का मजाक उड़ाने लगा। उसने अपने साथ में काम करने वालों और शमरिया के सेना अध्यक्षों के सामने कहा, यह निर्बल यहूदी कर क्या रहे हैं? क्या ये लोग अपने लिए इसको दोबारा बना लेंगे? तब क्या वे बलि चढ़ा सकेंगे? क्या वे यह काम एक ही दिन में पूरा कर सकेंगे? क्या वे पत्थर के टुकड़ों के ढेर से भवन बनाने के लायक पत्थर निकाल सकेंगे, जबकि ये आग में जल चुके हैं? अमोनी तोबिया, जो उसके पास ही खड़ा था, कहने लगा, अरे वे लोग जो बना रहे हैं, वह ऐसा है कि अगर एक लोमड़ी ही उस पर कूद पड़े तो उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपना ढह जाएगी। हमारे परमेश्वर, सुन लीजिए कि हमारा कैसा अपमान हो रहा है। उनके द्वारा की जा रही इस निंदा को उन्हीं पर लौटा दीजिए और उन्हें बंधुआई के देश में लूट का सामान बना दीजिए। उनके पाप को क्षमा ना कीजिए, आपके सामने से उनका पाप मिटाया ना जाए, क्योंकि उन्होंने शहरपना बनाने वालों का मनोबल खत्म कर दिया है। इस तरह हमने शहरपना को बनाया और सारी शहरपना उसकी आधी ऊंचाई तक पूरी हो गई, क्योंकि लोग इस काम के प्रति दृढ़ थे। इस मौके पर जब सनबल्लत, तोबिया, अरबियों, अमोनियों और अशदोदियों ने यह सुना कि यरूशलेम की शहरपना का मरम्मत का काम तेजी पर है और सभी नाके अब बंद किए जाने लगे हैं, वे बहुत ही गुस्सा हो गए। उन सभी ने मिलकर यरूशलेम पर हमला करने का षड्यंत्र रचा कि इसके द्वारा वहां गड़बड़ी डाली जा सके। इसलिए हमने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनकी योजनाओं का ध्यान रखते हुए वहां दिन और रात के लिए पहरेदार ठहरा दिए। सो यहूदिया में लोग इस तरह कहने लगे, बोझ उठाने वालों का बल घट गया है, फिर भी मलबा बहुत है, हम खुद ही शहरपना बनाने के लायक नहीं रहे हैं। हमारे शत्रुओं ने आपस में विचार विमर्श किया, हम ऐसा करें, हमारे उनके बीच में पहुंचने तक उन्हें यह पता ही ना चलने पाए, तब हम उनको मार के इस काम को खत्म कर देंगे। उनके आसपास के यहूदियों ने 10 बार आकर हमें इस षड्यंत्र की सूचना दी, वे लोग हर एक दिशा से आकर हम पर हमला करेंगे। इसलिए मैंने शहरपना के पीछे उन जगहों पर पहरेदार ठहरा दिए, जहां जहां ऊंचाई कम थी, जो जगह अब तक खुली पड़ी थी। मैंने परिवारों को उनकी तलवारों, भालों और धनुषों के साथ बैठा दिया। जब मुझे उनके मन में आ रहे डर का एहसास हुआ, मैंने रईसों, अधिकारियों और बाकी लोगों को यह कहा, कोई जरूरत नहीं उनसे डरने की, आप याद रखिए सिर्फ प्रभु को, जो महान और प्रतापी है। अपने भाइयों, अपने पुत्रों, अपनी पुत्रियों, अपनी पत्नियों और अपने घरों की भलाई को ध्यान में रखकर युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। हमारे शत्रुओं को यह मालूम हो गया कि हमें उनके षड्यंत्र का पता चल चुका है और परमेश्वर ने उनकी योजना विफल कर दी है। हम सभी शहरपना के अपने अपने काम में दोबारा लग गए। उस दिन के बाद मेरे आधे सेवक शहरपना के काम करते थे और आधे कवच पहनकर बर्छी, धनुष और ढाल लिए हुए रहते थे। यहूदा के सारे घराने को हाकिमों का समर्थन मिला हुआ था। वे सभी जो शहरपना को बनाने में लगे थे और जो सामान उठाने में लगे थे, एक हाथ से काम करते थे और दूसरे में हथियार थामे रहते थे। काम करते हुए भी हर एक मिस्त्री अपनी जांघ पर तलवार लटकाए हुए रहता था और जिस व्यक्ति की जवाबदारी थी नरसिंगा फूकना, वह लगातार मेरे पास ही खड़ा रहता था। रईसों, अधिकारियों और दूसरे लोगों को मैंने कहा, यह काम बड़ा और फैला हुआ है और हम सभी इस शहरपना पर एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, इसलिए जब कभी तुम्हें नरसिंगे की आवाज सुनाई दे, तुम उसी दिशा में आकर हमारे पास इकट्ठा हो जाना। हमारे परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करेंगे। इस प्रकार हम इस काम में लग गए। आधे लोग सुबह से लेकर तारों के दिखने तक बर्छी लिए हुए खड़े रहते थे। उस समय मैंने लोगों से यह भी कहा, हर एक व्यक्ति रात के समय अपने अपने सेवक के साथ यरूशलेम में ही रहे कि रात में तो वे पहरेदार हो जाए और दिन के समय काम करने लगे। ना तो मेरे लिए, ना मेरे संबंधियों के लिए, ना मेरे सेवकों के लिए और ना उन पहरेदारों के लिए जो मेरे साथ साथ बने रहते थे अपने कपड़े बदलने का मौका मिल पाता था। जब हम जलाशयों के पास जाते थे तब भी हथियारों को अपने साथ रखते थे।